So, पहले सड़क पे भी अगर धुआं होता था तो एटलीस्ट घर में हवा फिर भी साफ लगती थी. अब तो यहाँ पर भी अंदर भी आप देखो हवा कितनी गंदी है. नहीं, जो हम स्मेल कर रहे हैं तो क्योंकि धुएं की पेट्रोल की स्मेल आ रही है, आंखें जल रही हैं. कल हम लोग पड़गंज में थे और वहां पर हम चौथे फ्लोर पे बैठे हुए थे, तो वहां पर भी कमरे के बंद कमरे में एसी चल रहा था फिर भी आंखें जल रही थी. इतना पॉल्यूशन है, कैसे रह पाएंगे? और जैसे पंडित जी को हार्ट अटैक हुआ, वो इन पॉल्यूशन की वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे. बहुत सारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको दमा वगैरह है, अस्थमा है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और आप देखो सरकार कुछ भी नहीं कर रही इसके लिए, है ना? हाँ हाँ, वो छठी तक के स्कूल की छुट्टी की थी, ये कोई इलाज हुआ? मतलब कम से कम वो ऑडियो नहीं चला दें अगले 2 महीने के लिए? कम से कम कुछ तो ट्रैफिक वगैरह घटेगा कुछ तो. लेकिन किसी को कुछ पड़ा नहीं है. जो आम जनता है उनसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, है ना? सब लोग अपना स्वार्थ साध रहे हैं. दूसरों की क्या बोले, हमारे अपने जो फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने घर वाले हैं, वही अपना स्वार्थ साधने में लग रहा है. तभी तक कीमत है जब तक हाथ पैर चल रहे हैं. जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं उनसे पूछो कि घर में क्या हालत है उनकी, है ना? जब तक आप पैसा कमा के ला रहे हो, जब तक रोटी बना पा रहे हो, घर के काम कर पा रहे हो, तब तक पूछे. बाद में कोई नहीं पूछता. 10 बार मांगोगे तो पानी मिलेगा, है ना? अभी तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने हमें अच्छे से पूछा नहीं तो हम सोचते हैं दोबारा इसका मुंह भी नहीं देखेंगे, है ना? लेकिन जब हम अशक्त हो जाएंगे, शरीर में जान नहीं रहेगी जब, तो जिन घर वालों को हमने पाल पोस के बड़ा किया वही 10 बार कहने पर भी पानी भी नहीं पिलाएंगे. अभी दे तो रहे हैं, 2 मिनट सबर तो करो. नहीं, अभी तो बोला था, क्या हो गया? आसमान फट गया क्या? फिर भी हम वहीं पर पड़े रहेंगे, है ना? कुछ कुछ उपाय नहीं है, कहाँ जाएंगे, है ना? पूरा जीवन जिनके साथ रहे और फिर किसी को कह भी नहीं सकते. किसी को बोलेंगे जाके तो घर के लोग बोलेंगे आप हमारी बुराई कर रहे हो बाहर जाके. तो पहले अगर थोड़ा बहुत पूछते थे वो भी बड़ी जल देंगे. हाँ, ये हर घर की कहानी है. ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, सब घरों में ऐसे ही आया. कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ना? मेरे अपने रिश्तेदार थे, उनके 4 बेटे थे उनके, और तीनों ने तो बोल दिया कि आपसे हमारा कोई सरोकार नहीं. चौथे वाले ने रख लिया घर में. तो एक बार उनका लैट्रिन करने गए तो पैर चल गया, तो पैर पे उनके लैट्रिन लग गए और घर में लड़ाई चल गई कि कौन साफ करेगा उसको. तो उनको नीचे एक कमरा लेके वहां पे शिफ्ट कर दिया कि हमारे पास की नहीं है. तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो इधर पश्चिम बिहार में रहते थे। तो मैं मिलने गया तो वो बैठे हुए थे, और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मुझे देख के ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया आपका जी? उन्होंने कहा यार मैं 2 घंटे से मुझे पेशाब आ रहा है, मैं जा नहीं रहा पेशाब करने के लिए। मैंने कहा मैं तो यही तो बात हूँ 2 कदम चलने पे। कह रहे हैं डर लग रहा है फिसल गया तो क्या होगा। मेरा दिमाग एकदम घूम गया, मेरा दिमाग सुन के उनको पेशाब करा के लाया। तो कह रहे हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द है वहाँ दर्द है। मैंने कहा चलो आपको डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। कह रहे नहीं यार तू ले गया तो वो बुरा मान जाएंगे। तो मैंने कहा भाग में जाए बुरा मान जाए लात मारे, आपको अपनी पेंशन आ रही है 20-25 हजार रुपये आपको आ रहे हैं, आपको किसी का मैं देखने की क्या जरूरत है। अरे नहीं यार घर वाले ही होते हैं। तो मैंने ना लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो डॉक्टर को तो दिखा लो। अरे नहीं यार वो रोटी वोटी देते हैं, रोटी देना भी बंद कर देंगे। तो कह रहे वो रखेगा भी नहीं मुझे अपने घर में।
तो मैंने कहा मत रखे आप जो है मेरे साथ चलो, आपके बेटे
को बुजुर्गों की जरूरत नहीं है मुझे, सो आप आराम से रहना। मुझे पता है तुम ध्यान रखोगे लेकिन नहीं यहीं पर जो बची कुछ जिंदगी है यहीं निकाल दूंगा ऐसे। तो मैंने उनको कहा अंकल जी दोबारा आपसे मिलने नहीं आऊंगा कभी भी। कह रहे हैं क्या हो गया? मैंने कहा भी यहाँ तो आप मेरे साथ चलो या मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। तो फिर कुछ दिन बाद समाचार मिला कि डेथ हो गई और उनको मरे कई घंटे हो गए थे, किसी को पता ही नहीं। फिर लाश पे चूहे कूद रहे थे, सो सफाई करने वाली आई तो उसने देखा लाश पे चूहे कूद रहे हैं। तो फिर उसने जाके उनको बताया कि भैया गए हो, चलो अच्छा हुआ। भागवत में कहा गया है कि जब बूढ़े हो जाते हैं जो माँ बाप है तो बूढ़े बैल की तरह रखते हैं उनको। जो किसान होता है जैसे बूढ़े बैल पर होता है ना, निकाल भी नहीं सकता, गांव वाले क्या करेंगे, पूरा जिंदगी इसने सेवा की थी। और वो किसान जो है वो रोज सुबह बैल को देखने आता है। तो भागवत में लिखा है क्यों देखने आ रहा है उसको, तो उसका उत्तर है कि देखने आ रहा है कि जिंदा है कि मर गया। तो जो घर वाले हैं वो भी सुबह जाके हिलाते हैं तो चाय देने के लिए नहीं आते, इसलिए आते हैं देखने आ रहे हैं कि जिंदा है मर गया। सौ में से 100 लोगों को यही है ना। सो अगर ऐसा ही है तो अपनी पूरी आसक्ति अपने घर में ही डाल के रखना अकलमंदी नहीं है, है ना। इसलिए अगर आप देखो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कि 50 साल के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, है ना। तीर्थ यात्राओं पे जाओ, पहले शादियां भी जल्दी हो जाती थी, तो जब तक आप 50 साल तक पहुंचोगे अगली पीढ़ी सेट हो जाती थी, है ना। शादी वादी हो गई, चलो भैया घर चल रहा है। सो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 50 साल के बाद घर में नहीं रहो, तीर्थ यात्राओं पे जाओ। तीर्थ यात्राओं पे जाओगे तो वहां पे संतों का संग करने का मौका मिलेगा। घर के जो पचड़िया है, घर के रोजमर्रा की समस्याएं हैं, कुछ दिन के लिए उससे दूर रहोगे। पहले 2-4 दिन के लिए जाओ, फिर 10 दिन के लिए जाओ, फिर 1 महीना के लिए जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, ताकि परिवार में आसक्ति घटे, परिवार में आसक्ति बढ़े नहीं, है ना। तो जैसे ऐसे चुटकुला भी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा एक व्यापारी था, तो उसके 4 बेटे थे, तो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, तो 4 बेटे उसके आसपास थे। तो उसने बोला भी हो, पहले नंबर का लड़का कहा है हाँ पिताजी मैं यहाँ हूँ, दूसरा कहा है पिताजी यहाँ हूँ, तीसरा कहा है यहाँ हूँ, चौथा कहा है हाँ पिताजी मैं यही हूँ आपके पैर दबा रहा हूँ। तो कहते हैं फिर दुकान पे कौन बैठे है, चारो यही के लोग। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी पूरी आसक्ति अपने घर में अपने व्यापार में होती है, सो अगला जन्म उनको उसी घर में आसपास ही मिलता है, लेकिन घर वाले पहचान नहीं पाते। तो जो ये वाला व्यापारी था, इसका जो जन्म है एक बैल के रूप में हो गया, उसी घर के आसपास जहाँ पे दुकान थी, नीचे दुकान थी ऊपर घर था, है ना। सो एक दिन उसने देखा कि दुकान पे जो है जो नौकर है वो चोरी कर रहा है, और बेटा जो है आराम से बैठा हुआ अपने सपनों में खोया हुआ। तो उसने सोचा कि समझाता हूँ इसको जाकर, तो बड़े गुस्से में गया समझाने के लिए। लेकिन उसके बेटे ने क्या देखा, उसके बेटे ने क्या देखा कि एक बहन आए बड़ी तेजी से बोलता हूँ। तो उसने नौकर को बुला रहे फटाफट लाठी लेके आओ, ये दुकान खराब कर देगा। तो लाठी लेके आया उसका नौकर, और दोनों ने मिलके बहुत मारा उसको बैल को। सो अगर हम बहुत ज्यादा आसक्त रहेंगे अपने परिवार से, तो जैसा उस व्यापारी के साथ वैसे ही हमारे साथ होने वाला है। हम कुछ कोई बहुत अद्भुत अलग व्यक्ति थोड़े हैं, है ना, जो सबके साथ रूल चल रहा है हमारे साथ भी चलेगा नहीं। सो इसीलिए जितना हम आसक्ति घटाएंगे अपने परिवार वालों के साथ, इस शरीर के साथ, अपने मकान के साथ, उतना हमें दुख भी कम होगा और सुख भी कम होगा, है ना। अगर आपको ये कहा जाए कि देखो आपको पूरा जीवन दुख नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको सुख भी नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि दुख ज्यादा है सुख कम है। अगर हम पलड़ा उसको तोड़ के देखें नहीं, तो दुख का पलड़ा भारी है झुका हुआ है, और सुख का पलड़ा बहुत हल्का है, सुख तो बीच बीच में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? ताकि आशा बंधी रहे कि हाँ सुख भी हो जाए। वास्तव में सुख है नहीं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है ये नश्वर है, अशाश्वतम नश्वर है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना हमारे संबंधी स्थायी है, ना हमारे मित्र स्थायी है, ना घर बार स्थायी है, ना हम खुद स्थायी है। हर चीज छिन जाएगी, चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो, है ना, हर चीज छिन जाएगी। वो क्योंकि छिन जाएगी इसलिए दुखालय है। दुखालय का मतलब है कि दुखी रूप बने रहे यहाँ पर। तो जब सुख भी होता है तो वो सुख भी दुख का ही कारण बनता है ना। जैसे एक राजा थे, बहुत महान राजा थे चित्रकूट। भागवत में वर्णन आता है उनका कि जो चित्रकेतु राजा थे उनके 1 लाख रानियां थी उनकी, लेकिन एक भी संतान नहीं थी, तो बड़े परेशान रहते थे। एक बार वहां पर नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, नारद जी और पर्वत मुनि वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने चित्रकेतु को देखा। उन्होंने कहा कि आप राजा इतने परेशान क्यों? उसने कहा मेरी संतान नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि संतान आपके अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं है, उसमें इतना दुखी होने की बात क्या है, आपकी प्रजा आपकी संतान है, उनकी देखभाल करो। नहीं, मेरी संतान होती तो कितना अच्छा होता, तो आप प्लीज मुझे कुछ वरदान दो कि मुझे संतान। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, लेकिन ये जो बच्चा है आपके दुख का कारण बनेगा। ठीक है, बनेगा, फ्यूचर हो गया ना, अभी तो बच्चा होगा तो सुख का कारण बनेगा। अभी तो मुझे बच्चा मिलने से मेरे को बहुत खुशी होगी मुझे। नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दे दिया, ठीक है फाइन, आपके यहाँ में बच्चा होगा, पुत्र मिलेगा आपको। तो एक जो उनकी रानी थी, 1 लाख रानियों में से एक रानी गर्भवती हो गई, पुत्र पैदा हो गया, बहुत ही तेजस्वी पुत्र। तो अब जिस रानी से बच्चा पैदा हुआ उसके प्रति राजा का लगाव ज्यादा हो गया, बाकी जो रानी है उनको ईर्ष्या हो गई, उन्होंने विष दे दिया और वो बच्चा मर गया, है ना। तो वो बच्चा मरने से चित्रकेतु जो राजा है उसको बहुत ज्यादा दुख मिला, है ना। पहले कम दुखी था, है ना, है ही नहीं एक चीज, है ना। अगर सपोज आपको कनॉट प्लेस में 500 गज का बंगला मिल जाए और आपको 2 महीने बाद वहां से किसी कारण से बाहर निकाल दें तो दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। जबकि अभी नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जीवन चल रहा है ना। इसी तरह से अगर हमें सुख अगर कम मिलता है तो दुख भी हमें ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसने सुख देखा हो, ऐसा भी होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो अचानक घाटा पड़ जाए तो बहुत दुखी हो जाता है, कई बार तो आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग, नहीं, वो सोचते हैं कि पहले हम कितने सुखी थे, अभी ये दुख जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारे से, है ना। अगर हम एक समान अगर जीवन बिताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग आसक्ति घटाएं अपने शरीर के साथ, घर वालों के साथ, और आप देखना, अगर आप आसक्ति घटाओगे, भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, आप अगर जीवन में कष्ट आएंगे, और जीवन में कष्ट आएंगे जब तक इस संसार में है, ऊंच नीच लगी रहेगी, है ना, तो आप देखेंगे कि अगर जितनी आसक्ति कम होगी उतना ही आपको दुख भी कम होगा, है ना। जितनी आसक्ति ज्यादा होती है उतना दुख भी ज्यादा महसूस होता है। जितना हम अपने आप को अपनी आसक्ति घटाएंगे, लेकिन आसक्ति अपने आप से नहीं घटेगी, ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपनी आसक्ति घटाने की कोशिश करते हैं। हमें आसक्ति घटाने का एक तरीका है, जब तक हम उस तरीके को नहीं अपनाएंगे तब तक हम आसक्ति नहीं घटा पाएंगे, है ना। जैसे एक खाली गिलास होता है, तो खाली गिलास खाली होता है, उसमें कुछ चीज होती है। अगर एक खाली गिलास है सपोज, तो वो खाली है, ये जो हॉल है यहाँ पे, आपके हमारे अलावा कुछ और भी है कि नहीं है, कोई चीज है कि नहीं है, क्या है, हवा है ना। जैसे खाली गिलास है उसमें भी हवा होती है ना, पता नहीं होता आपको, अगर कोई खाली गिलास है उसमें हवा होती है, अगर आप उस खाली गिलास में से हवा को निकालने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल काम है, है ना, कैसे निकालोगे उसमें से हवा को पानी। लेकिन अगर आप उस गिलास में पानी भर दोगे तो हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी, नहीं कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ा, पानी डाला, काम खत्म। उसी प्रकार अगर हमने आसक्ति घटानी है तो अपने परिवार में आसक्ति घटानी है तो हमें भगवान में आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अगर हम भगवान में आसक्ति बढ़ाएंगे तो अपने आप देखोगे परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता में कहा गया परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आपको ज्यादा अच्छा रस प्राप्त होगा तो जो कम अच्छा रस है उसके प्रति अपने आप हमारा मन हट जाएगा। अगर मक्खन वाली रोटी खाने को मिलेगी तो सूखी रोटी नहीं खाएगा, नहीं। सो आवश्यक है कि हम भगवान के प्रति अपने आसक्ति बढ़ाए। तो लेकिन क्या भगवान से आसक्ति बढ़ानी चाहिए सिर्फ इसीलिए कि परिवार में आसक्ति घटे? क्या भगवान में आसक्ति बढ़ाने का कुछ और कारण नहीं है क्या? क्या सिर्फ अपने परिवार में आसक्ति घट जाए यही कारण से भगवान में आसक्ति बढ़े? ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप अपने घर वालों को अपना सगे संबंधी समझकर उनमें आसक्ति आपने रखी हुई है, लेकिन वो जो आपके सगे संबंधी हैं वो अस्थाई हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, और आज नहीं है कल बहुत सारे रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, घर में बच्चा पैदा होता है, या हमने अपने बेटा या बेटी की शादी की तो एकदम से बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, नहीं है ना। सो भगवान कह रहे हैं ये सारे रिश्ते अस्थाई हैं, ये आपको ये दिखाने के लिए है कि आप किसी व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये प्रेम आप अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा देर तक मत करते रहो, ये प्रेम आप मेरे साथ करो। क्यों? क्योंकि अहम बीज प्रदा पिता, क्योंकि मैं आपका पिता हूँ, आप सब मेरी संतान, है ना। और जैसा नश्वर रिश्ता आपका अपने सगे संबंधियों के साथ है, मेरे साथ ऐसा नहीं है वो रिश्ता। मेरे साथ आपका रिश्ता जो है वो शाश्वत है। अगर आपने मेरे साथ संबंध जोड़ लिया तो वो संबंध कभी भी टूटेगा नहीं, है ना। और अगर हमने भगवान के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ किया तो भगवान हमें वापस अपने धाम लेके जाएंगे। वहां पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना भूतकाल है, ना भविष्यकाल है। जो जिस क्षण में आप जी रहे हो वही क्षण चलता रहेगा, है ना। और वहां पे कुछ बुढ़ापा, रोग कुछ भी नहीं है। हमेशा सब जितने भी वैकुंठ के लोग हैं वो सारे हंसते खेलते गाते रहते हैं। जो खाने की इच्छा होती है अपने आप मिल जाता है ना। और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। आपका फोन है? अच्छा,
हेलो
प्रभु, क्या कर रहे हो आप? आपको इतना समझ आने चाहिए कि आपको फोन नहीं लेना चाहिए। चलो ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।